अध्याय 9 का पहला श्लोक श्री भगवान उवाच।
इदन्तु ते कुइहतमं प्रवक्षाम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्।
श्री भगवान ने कहा, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। अध्याय 9 का दूसरा श्लोक। यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। अध्याय 9 का तीसरा श्लोक।
अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि।
हे शत्रुतापी अर्जुन, इस सच्ची गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु ठेठ विधर्मी या विदेशी लोग मुझको न पाकर मृत्युलोकी कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार में हिंसक राक्षसों के दक्षिणायन मार्ग में 2500 वर्ष के नरकलोक में पुनः लौट जाते हैं। देखिए गीता के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक। अध्याय 9 का चौथा श्लोक। मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज अर्थात बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित हैं, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। फुटनोट: नाहम तेषु ते मयि, गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है, तो अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष बीज बा आदिदेव अर्थात आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। अध्याय 9 का 5वां श्लोक। मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहाँ आकाशादी जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा अर्थात देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति, योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली। देखिए गीता के 3रे अध्याय का 14वां श्लोक। सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण कतरी, मेरी अजन्मा अगर्भा अकर्ता अभोक्ता सदा निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़ जंगम योगूर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। अध्याय 9 का 6वां श्लोक। जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता परम ब्रह्म आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत्त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापुर कली के नारकीय प्राणी मेरे स्थान लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित हैं। ऐसे मानव बीज महादेव में वटवृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। अध्याय 9 का 7वां श्लोक। हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परमाकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सत्यधि आदि काल से मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ता हूँ। अध्याय 9 का 8वां श्लोक। मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग अर्थात देहरूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति की आधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मा रूप परमाकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। अध्याय 9 का 9वां श्लोक। और हे ज्ञानधन जी अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्म ज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतितम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। अध्याय 9 का 10वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, कल्पादिकाल की शूटिंग में मेरी अध्यक्षता द्वारा अर्जुन अर्थात आदम अर्थात शंकर की मुझ शिव समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग अर्थात देह अर्थात प्रकृति जड़ चेतन सहित बीजरूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से अधोमुखी मानवीय सृष्टि वृक्ष पीपल का जगत विपरीति गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्म रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। फुटनोट: अभी सबको नंबर वार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को भोगी जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही है। अध्याय 9 का 11वां श्लोक। मूर्ख लोग अर्जुन अर्थात आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्म भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। अध्याय 9 का 12वां श्लोक।
चेतसा
फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। फुटनोट: दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई बीसियों वर्ष पुरानी इमारतों को खंडहर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स टकारने के इच्छुक और पचासियों बालिक कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने चार चार माह तक बंधक बनाने और उन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा? अध्याय 9 का 13वां श्लोक:
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवे प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तम कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माए प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। अध्याय 9 का 14वां श्लोक: वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए ऐसे निर्मांचित सदायोगी जन मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। अध्याय 9 का 15वां श्लोक: दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्व मान्य पंचमुखी ब्रह्मासु विष्णु अर्थात पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जीसस सिद्धार्थादि मूर्तियों में उपासना करते हैं। फुटनोट: पंचानन ब्रह्मासु पंचमुखी महादेव सो चतुर्भुजी विष्णु। विष्णु की चार सहयोगी आत्माएं ही जड़भुजा रूप में दिखाई हैं, किंतु पांचवा मुख रूप चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदि देवात्मा भ्रिकुटी में दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पंचानन महादेव के तीसरे शिवनेत्र से विराजमान है ही। अध्याय 9 का 16वां श्लोक: मैं यज्ञराज हूँ, मैं मन वचनादि का ज्ञान यज्ञ हूँ। परमात्म स्मृति रूप में शिव प्लस बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ। मैं रोगी अर्थात विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। मैं मनमनाभव का महामंत्र हूँ। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ। मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्यागरूप आहुति हूँ। फुटनोट: आदिदेव बना आदम ही सारी जड़चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। अध्याय 9 का 17वां श्लोक:
माता धाता पितामह।
जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्थात अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा प्लस सच्ची गीता ज्ञानामृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन कत्री अर्थात परम ब्रह्मा रूपा माता कर्मफल विधाता युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज वैसे ही बुद्ध क्राइस्टादि धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप अर्थात बाबा आदम द्वारा सारे मनुष्य मात्र का बीज हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋक साम यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा में ही हूँ। अध्याय 9 का 18वां श्लोक मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सदगति पति अर्थात स्वामी साक्षी परम आश्रय शरणागत वत्सल मित्र उत्पत्ति विनाश स्थिति हूँ। त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समूची जड़चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अर्थात अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। मूल्य तारीख 2 जनवरी 1975 पृष्ठ 3 अंत महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल अर्थात ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। अध्याय 9 का 19वां श्लोक मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञानजल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अर्थात अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञानार्जन करता अर्जुन सदा सत्य और षठे शाठ्यम समाचरेत अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगत पिता अर्थात आदम पर लागू न हो। मूल्य तारीख 14 अप्रैल 1968 5 मई 1969 पृष्ठ 3 अंत अध्याय 9 का 20वां श्लोक पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं उसी मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करके सत्युग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्ण चंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अध्याय 9 का 21वां श्लोक वे त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोगकर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलियुगी नरनिर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन तीन धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगम युग में भूत भविष्य संबंधी कामे कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। अध्याय 9 का 22वां श्लोक। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। मुरली तारीख 16/10/77 पृष्ठ 3 मध्य। कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। कुरान। परमपिता प्लस परम आत्मा को पहचानेंगे तब ही ऐसा होगा। अध्याय 9 का 23वां श्लोक। हे देहभान नाशिनी कुंतयती दारेती देहम, ऐसी कुंती के पुत्र जो शिव बाबा के अलावा कोई अन्य ब्रह्मा विष्णु कलाबद्ध लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं वे एडवांस सच्ची गीता विधि विधान रहित रुद्रयज्ञ सेवी मंद भक्त भी अव्यक्त मूर्त बने विदेही रूप मेरे ज्योतिर्लिंग की ही यज्ञ सेवा करते हैं। अध्याय 9 का 24वां श्लोक। क्योंकि मैं शिव ही नीची 7 कुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी मुझ साधारण आदम तंधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी स्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। अध्याय 9 का 25वां श्लोक। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं बेहद पिता सिवा अन्य के पितृ भक्त अपने पितरों को पाते हैं भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। फुटनोट। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही करी विचार देखूं मन माही। अध्याय 9 का 26वां श्लोक। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते पुष्प फल जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसी उस झूठी झाठी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विषपाई शिव बाबा प्रसन्नता से समयानुसार ग्रहण कर लेता हूँ। अध्याय 9 का 27वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है, या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वा जो आत्मस्तार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। अध्याय 9 का 28वां श्लोक।
शुभा शुभ फलै
इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ग में आधाकल्प के लिए मुक्त हो जाएगा। उनसे पूरा ही छूटा हुआ यथा योग्य समुचित त्यागी और मेरे से योग्युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। फुटनोट: राज्योग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते। नंबर वार नरक बनाने वाले नर अधीन ही बनावेंगे। स्वमाने ही अपनी आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता प्लस परमात्मा राजयोगेश्वर। अध्याय 9 का 29वां श्लोक। मैं श्रेष्ठ हूँ या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ। मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा है। किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं, वे मुझ में हैं और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। अध्याय 9 का 30वां श्लोक। यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चय देह से नष्ट हो जावेंगे। अध्याय 9 का 31वां श्लोक। दृढ़ निश्चय जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबर वार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो वह मेरा भक्त नारकीय द्वापुर कलियुग में भी धर्म भ्रष्ट अर्थात नष्ट नहीं होता। अध्याय 9 का 32वां श्लोक। क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री वैश्य तथा शूद्र जैसी पापियोनिया भी हूँ, वे भी पूर्व जन्म कृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। अध्याय 9 का 33वां श्लोक।
सुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां।
फिर फिर पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों अथवा राजर्षियों का क्या कहना। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदायी अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। अध्याय 9 का 34वां श्लोक। तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा, पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा।
श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः।